ऋतु के चरित्र तथा सूर्यवंश का वर्णन। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्रह्मन, सुना जाता है कि पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध से ही राजाओं का पार्थिव को पार्थिव या पृथ्वीपति कहते थे, परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संज्ञा है वह किसके संबंध से हुई है? भूमि को यह पारिभाषिक संज्ञा किसके लिए दी गई है? उसका गौ नाम भी कैसे पड़ा? यह सब हमें बताएं। पुलत्स्य जी ने कहा, स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेन नाम का पुत्र हुआ जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता था और पराई स्त्रियों को हड़प करता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई के लिए और जगत के उपकार के लिए उसको बहुत कुछ समझाया, परंतु उसका अंतकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात को नहीं मानी, प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने शाप देकर उसको मार डाला। फिर अराजकता से भय से पीड़ित होकर पाप रहित ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने के कारण शरीर से पहले मलेच्छ नाम की जाति प्रजा हुई। उनका रंग काले और अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष बाण और गदा लिए हुए धारण किए हुए था तथा रत्नमय कवच एवं अंगदादि आभूषणों से विभूषित था। वह पृथ्वी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही वहीं अवतरित हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि भूतल से धर्म उठ गया है, नहीं कहीं स्वाध्याय होता है न वशटकार यज्ञादि। तब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी का विदर्ण कर डालने के लिए उद्यत हुए। यह देखकर पृथ्वी ने गौ का रूप धारण किया और भाग खड़ी हुई। उसे भागते देखकर पृथ्वी ने उसका पीछा किया। तब वह उस स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? पृथ्वी ने कहा, हे सुव्रते, संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो अभिष्ट वस्तु है उसे शीघ्र ही प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर उसकी स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया और अपने हाथ से पृथ्वी का दूध दुआ। वहीं दूध अन्न हुआ जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमा ही बछड़ा बने थे। दूहने वाले थे वनस्पति, दुग्ध पात्र था वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधाओं को धुआ। उस समय मित्र देवता दुग्धा बने, इंद्र बछड़ा बने और ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुए। देवताओं का दोहन पात्र स्वर्ण का था और पितरों का चांदी का। पितरों की ओर से अंतक दुहने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और स्वधा ही दूध के रूप में प्राप्त हुई। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्षक को बछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नाग ने दुग्धा बनकर विश्वरूपी दुग्ध का दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी का माया रूपी दूध दुआ। उस समय प्रहलाद कुमार विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धा ने दुहने का काम किया था। यक्ष अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्धान विद्या ही वसुधा के दुग्ध के रूप में दुहा। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बना के कमल के पत्ते में पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उनकी ओर से अथर्ववेद ही के पारगामी विद्वान सुरुचि ने दूध दूने का काम किया। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपने अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथ्वी के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी था, न निर्धन था, न पापी था, न कोई उपद्रव था, न कोई पीड़ा थी। सब सदा ही प्रसन्न रहते थे, किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबली पृथ्वी ने लोगों के हित की कामना से अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बनाया। पृथ्वी के राज्य में गांव बसाने के लिए किले बनवाने की आवश्यकता ही नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का कोई भी प्रयोजन नहीं था। मनुष्य को विनाश एवं वैमनस्य का दुख नहीं देखना पड़ा। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म से ही संलग्न थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वी के दोहन के पात्रों का वर्णन किया और जैसा जैसा दूध दुआ गया था वह भी मैंने बताया। राजा पृथ्वी बड़े विद्य थे, जिनकी जैसी रुचि बताई गई थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने योग्य है, इसलिए मैंने तुम्हें सुनाया है। यह भूमि धर्मात्मा पृथ्वी की कन्या मानी गई है, इससे विद्वान पुरुष पृथ्वी भी कहकर उसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, हे ब्रह्मन, आप तत्व के ज्ञाता हैं। अब क्रमशः सूर्यवंश और चंद्रवंश का पूरा पूरा यथार्थ वर्णन कीजिए। पुलत्स्य जी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल में कश्यप जी ने अदिति के गर्भ से विवस्वन नाम का पुत्र हुआ। विवस्वन के 3 स्त्रियां थी, संज्ञा, राग्नी और प्रभा। राग्नी ने रैवत नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। प्रभा से प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी, उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा ने गर्भ से यम और यमुना नामक 2 जुड़वी संतानें उत्पन्न की। तदंतर वह विवस्वान सूर्य के तेजोमय स्वरूप को न सह सकी, अतः उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम छाया हुआ। छाया सामने खड़ी होकर देखकर बोली, देवी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? संज्ञा ने वो कहा, हे छाया, तुम मेरे स्वामी की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों की भी माता, मेरे बच्चों का भी माता की भांति स्नेहपूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर छाया भगवान सूर्य के पास गई। वह उनसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम करने वाला व्रत करने का वाली संज्ञा है, बड़े आदर के साथ उसकी कामना पूर्ण की। छाया ने सूर्य से सावर्ण मनु को उत्पन्न किया। उनका वर्ण भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ा। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने छाया के गर्भ से क्रमशः सनेश्वर नामक पुत्र तथा तप्ती और विष्टि नाम की कन्या को जन्म दिया। एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां फल, फैन एवं वायु का आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने 100 वर्षों तक तपस्या की और तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी बहुत संतुष्ट हुए। तब यमराज ने उनसे लोकपालक का पद अक्षय पितृलोक का राज्य तथा धर्ममय जगत की देखरेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा से लोकपाल की पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्होंने पितृलोक का राज्य तथा धर्म अधर्म के निर्णय का अधिकार भी उन्हें मिल गया। छाया के पुत्र सनेश्वर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की समानता प्राप्त हुई। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विष्टि का स्वरूप बड़ा भयंकर था, वह काल रूप से स्थित हुई। वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए, उन सब में से ईल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों का नाम इस प्रकार है: इश्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली शर्याति, पृष्ण, पृषध, पृषद्र तथा नभाग, नाभाग। ये सभी दिव्य पुरुष हुए। राजा मनु अपने ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा इल को राज्य अभिषिक्त करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या के लिए चले गए। तदंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, हे मनो, तुम्हारा कल्याण हो और तुम्हारी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, हे स्वामी, आपकी कृपा से पृथ्वी का संपूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो। तथास्तु कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्वव्रत रहने लगे। इसके बाद राजा ईल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल का विचरण करने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम घूम कर वहाँ के राजाओं को अपने वश में करते थे। एक दिन प्रतापी ईल रथ में बैठकर भगवान शंकर के महान उपवन में गए, जो कल्पवृक्ष रूपी लताओं से व्याप्त था एवं श्रवण नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव चंद्र, चंद्रार्ध शेखर, भगवान शिव, पार्वती जी के साथ क्रीड़ा करते थे। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ श्रवण के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात करी थी कि पुरुष नामधारी जो भी जीव हमारे वन में आएगा, वह इस 10 योजन के घेरे में पैर रखते ही स्त्री हो जाएगा। राजा इल ने इस प्रतिज्ञा नहीं जानते हुए वह श्रवण वन में चले गए। वहां पहुंचने पर सहसा वह स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उस समय घोड़ी बन गया। राजा के जो जो पुरुषोचित अंग थे, वह स्त्री के अंग के आकार में परिणत हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वह ईला नाम की स्त्री थी। ईला इस वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन हैं? वह इस उधेड़ बुन में क्या कर रही थी? इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसको देखा। ईला की दृष्टि भी बुध पर पड़ी। सुंदरी ईला का मन बुध के स्वरूप पर मोहित हो गया। उधर बुध भी ईला को देखकर काम पीड़ित हो गया और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगा। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में था। वे वन के बाहर पेड़ों में झुरमुट में छिपकर ईला को बुलाने लगा। हे सुंदरी, यह सांझ का समय है, विहार की वेला है जो बीत जा रही है। आओ, मेरे घर को लीप पोत कर फूलों से सजा दो। ईला बोली, हे तपोधन, मैं यह सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ, मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, मेरे स्वामी कौन है और मेरे कुल का परिचय क्या है? बुध ने कहा, हे सुंदरी, तुम ईला हो, मैं तुम्हें चाहने वाला बुध हूँ। मैंने बहुत विद्याएं पढ़ी हैं, तेजस्वी कुल में मेरा जन्म हुआ है, मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुध की यह बात सुनकर ईला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र के भवन को भी मात करने वाला था। वहां रहकर ईला ने बहुत समय तक बुध के साथ वन में रमण किया। उधर ईल के भाई इश्वाकु और मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए श्रवण वन के निकट में आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्र से पार्वती और महादेव जी का स्तवन किया। तब वे दोनों वहां पे प्रकट होकर बोले, हे राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो यह टल नहीं सकती, किंतु इस समय कोई उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करे और उसका फल हम दोनों को अर्पण करें। ऐसा करने से वीरवल इल कुंभपुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, कहकर मनुकुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ किया, इसमें इला कुंभपुरुष बनी। वे एक महीने पुरुष और एक महीने स्त्री के रूप में रहने लगी। बुध के भवन में स्त्री रूप से रहते रहते इला ने गर्भ धारण किया। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त ऐसे पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोक चले गए। यह प्रदेश इल के नाम पर इलावृत वर्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्रवंश का विस्तार करने वाला राजा हुआ। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु को सूर्यवंश की वृद्धि करने लगे। इल कुंभपुरुष अवस्था में सुद्रुम्न भी कहलाते थे। तदंतर सुद्रुम्न ने 3 पुत्रों को जन्म दिया जो किसी से परास्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम थे उत्कल, गय तथा हरिताश्च। हरिताश्च बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गय की राजधानी गया मानी गई है। इस प्रकार हरिताश्च कुरु प्रदेश के साथ साथ ही दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुद्रुम्न अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठानपुर पैठण के राज्य पर अभिक्षित करके स्वयं दिव्य वर्ष के फलों का उपभोग करने के लिए इलावृत वर्ष में चले गए। सुद्रुम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य देश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के ही उत्तरीय प्रदेश के राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र हुए जो मेरु के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं। इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र से ककुस्थ नाम का पुत्र हुआ। ककुस्थ का पुत्र सुयोधन था। सुयोधन का पुत्र पृथु था। पृथु का विश्वावासु हुआ। उसका पुत्र आद्र और आद्र का पुत्र युवनाश्च हुआ। युवनाश्च का पुत्र महापराक्रमी शाश्वत हुआ, जिसने अंग देश में श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई। श्रावस्त के बहुदश्व और बृहदश्व से कुलाश्व और कुलाश्व धंधु नामक दैत्य का विनाश करके धंधु कुमार के नाम से प्रख्यात हुए। उनके 3 पुत्र हुए, दृढ़ाश्व, दंड तथा कपिलाश्व। धंधु कुमार के नाम से ये पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दृढ़ाश्व का प्रमोद और प्रमोद का हर्यश्व। हर्यश्व से निकुंभ तथा निकुंभ से सहमताश्व का जन्म हुआ। सहमताश्व के 2 पुत्र हुए, अक्रुताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युवानाश्व और युवानाश्व के पुत्र मंदाता थे। मंदाता के 3 पुत्र हुए, पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुंद। इनमें से मुचुकुंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुरुकुत्स का पुत्र संभूत था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ। संभूत से संभूति और संभूति से त्रिधन्वा का जन्म हुआ। त्रिधन्वा का पुत्र त्रयधारों के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था और उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ, रोहित से वृक और वृक से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के परम पुत्र धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर को दो स्त्रियां थी, प्रभा और भानुमती। इन दोनों की पुत्र की इच्छा से और्व नाम की अग्नि की आराधना की। उससे संतुष्ट होकर और्व ने उन दोनों को इच्छानुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त कर सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन दो वरों से में से जो पसंद आए, जो जिसे पसंद आए वह उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया और भानुमती को एक ही पुत्र अश्वमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने वो जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्र को उत्पन्न किया। जो अश्व की खोज के लिए विश्व को खोदते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के कोप से दग्ध हो गए। अश्वमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका पुत्र था दिलीप। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भगीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र का नाम नाभाग हुआ। नाभाग से अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुद्वीप हुए। सिंधुद्वीप से अयुतायु और अयुतायु से रुतपर्ण का जन्म हुआ। रुतपर्ण से कलमाशपाद और कलमाशपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा आरण्यक और आरण्यक का पुत्र निद्न हुआ। निद्न के दो उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का विनाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घभाव और दीर्घभाव से प्रजापाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल को दशरथ नामक पुत्र हुआ। उनके चार पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान श्री नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया, तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्रों का चित्रण किया। राम के दो पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु को वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुनरिक तथा पुनरिक से क्षेमधन्वा की उत्पत्ति हुई। क्षेमधन्वा का पुत्र देवानिक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अहिनगु हुआ। अहिनगु से सहस्त्राश्व का जन्म हुआ। सहस्त्राश्व से चंद्रलोक का जन्म हुआ। चंद्रावलोक से तारापीठ और तारापीठ से चंद्रगिरी, चंद्रगिरी से चंद्र, चंद्र से श्रतायु हुए, जो महाभारत के युद्ध में मारे गए। नल नाम के दो राजा प्रसिद्ध है। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान प्रधान राजाओं का मैंने वर्णन किया है।